इसके पहले कि हम लोग प्रश्न उत्तर लें, एक्चुअली कल की भी कुछ चीज़ें रह गई और पोयम भी मैंने सोची थी, लेट्स सी व्हेन वी कैन रीड इट। पर एक चीज़ जो रह गई थी, जो जिसकी ओर मेरा ध्यान पूनम जी ने ड्रॉ किया और मुझे लगता है कि वो बात सही है, उसको यहाँ स्पष्ट हो जानी चाहिए, वो ये कि कल गृहस्थ जीवन की एक बात हुई थी और उसमें ऐसा भाव शायद चला गया हो कि गृहस्थ जीवन आवश्यक है योग यात्रा के लिए, तो वो आशय नहीं है। इनफैक्ट इसमें कोई दो राय नहीं कि गृहस्थ जीवन या किसी भी प्रकार से जब हम मोह आसक्ति इत्यादि के जंजाल में पड़ते हैं तो वो बहुत अधिक हमारी ऊर्जा को खींच लेता है अपनी ओर, बहुत सारी ऊर्जा उसमें चली जाती है जिसमें अपना सेटिस्फैक्शन या अपना नहीं भी अगर हम करें तो उनका सेटिस्फैक्शन जो हमारे जीवन से जुड़ गए हैं। और ये केवल गृहस्थ जीवन में नहीं होती है, ये हर प्रकार से भाई बहन किसी भी प्रकार के संबंध में जहाँ भी डिपेंडेंसी है, वास्तव में ये तब आती है जब डिपेंडेंसी होती है। अगर कोई व्यक्ति हम पर डिपेंड करता है या हम किसी पर डिपेंड करते हैं तो ये चीज़ स्वाभाविक है, परंतु स्त्री पुरुष के संबंध में विशेषकर विवाह में ये चीज़ बहुत अधिक होती है, क्योंकि वो सामाजिक दृष्टि से है ही, इस उसकी नेचर ही है। तो माता जी ने इसका बड़ा सुंदर एक हल दिया है, अर्थ ये कि अगर मान लीजिए कोई गृहस्थ जीवन में है ऑलरेडी तो क्या करें, तो एक तरीका है कि वो सब चीज़ों को काट फेंक के किनारे आगे बढ़ जाना, सम पीपल कैन डू इट, पर उसकी जो कठिनाई ये होती है कि जो इम्पॉर्टेंट लेसन होता है और जो उससे हमें कुछ ग्रो करना होता है वो हम नहीं कर पाते। और दूसरी समस्या ये होती है कि कई बार इस एक्शन में हर कोई बुद्ध होता नहीं, हमारे अंदर हार्शनेस डेवलप होने लगती है और हृदय के कोमल भाव विशेषकर प्रेम की ऊर्जा कहीं भीतर चली जाती है, वो हर्ट होकर के अंदर चली जाती है और उसको कई बार निकालने में, जैसा कल हम पढ़ रहे थे, माता जी बताती हैं टेक सेंचुरीज फॉर इट टू कम आउट, जबकि करना ये चाहिए कि अगर प्रेम की ऊर्जा हमारी बाहर निकल गई है उसको शुद्ध परिष्कृत करते जाना चाहिए। माँ कहती हैं इट इज़ मोर डिफिकल्ट बट ए मोर कम्प्लीट पाथ, दोनों चीज़ कहती हैं, एक और हम उसको बाहर से छोड़ सकते हैं चीज़ों को और आगे बढ़ सकते हैं, दूसरी ओर हम उसको लेकर चलते हैं लेकिन अपने अंदर काम करते रहते हैं, दूसरे को बदलने की चेष्टा नहीं करते। और ये माता जी का विशेषकर वॉल्यूम 8 में, जो बाद में इसको विस्तार से पढ़ना चाहें, 1956 का माता जी का प्रश्न है, उसका उत्तर है, और इसमें बहुत विस्तार से माता जी ने, इफ आई रिमेंबर करेक्टली इट इज़ पेज 301, तो उस पर इस प्रश्न को माने डिटेल में डील किया है। और माँ कहती कि दोनों रास्ते हैं, या तो हम अकेले चलें या अगर कोई हमारे साथ जुड़ा है तो साथ लेके जब चल रहे हैं, तो दूसरे रास्ते को माँ कहती है अधिक कठिन है लेकिन अधिक कंप्लीट है, दोनों चीज़ें, क्योंकि उसमें कठिनाई भी ज़्यादा होती है। कठिनाई इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि नेचुरली अपना भार कुछ कम नहीं होता, साथ में एक और भार जुड़ जाता है, पर वो बाद में जो मार्ग में अंत होता है वो भी ज़्यादा कंप्लीट होता है, क्योंकि हमें अवसर मिलता है उस ऊर्जा को शुद्ध परिष्कृत करने का। सो दैट इज़ दी थिंग। साथ में पुरुष स्त्री के संबंध में, विशेषकर विवाह के संदर्भ में, माताजी ने बड़ा सुंदर एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला दिया है, एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल सो कंप्लीट, इसको अगर हम देखें तो रियली उसको अप्लाई करें तो इट विल टेक अस वेरी फार, और बड़ा सिंपल है। माँ कहती है पुरुष और स्त्री एक दूसरे के दास कैसे बनते हैं, क्यों वो बंध जाते हैं इस प्रकार के मोह पाश में और उसके कारण समस्या होती है। प्रेम में समस्या नहीं होती है, परंतु वो जो डिपेंडेंसी होती है, तो कहते हैं पुरुष स्त्री के प्रति दास कैसे बनता है, तीन चीज़ों के कारण बनता है। एक, उसके अंदर जो कामुक वृत्ति होती है जिसमें वो अपनी कामना को सेटिस्फाई करना चाहता है स्त्री के द्वारा, दैट इज़ द फर्स्ट बॉन्डेज। दूसरा बॉन्डेज ये होता है वो डोमिनेट और पजेस करना चाहता है, उसको कोई चाहिए इस पर वो अपना अधिकार जमा सके, तो पत्नी उसके लिए एक अधिकृत वस्तु हो जाती है, ना कि एक जीवंत सत्ता जिसकी अपनी आत्मा है, अपनी एक स्वतंत्र विकास की गति है इत्यादि है। और तीसरा, लुक हाउ प्रैक्टिकल मदर इज, बिकॉज ऑफ दी स्मॉल कंफर्ट्स ऑफ मैरिड लाइफ, कि घर में आएगा तो कोई चाय बनाने वाला है, घर में आएगा तो कोई सामान को ठीक से रखने वाला है, इन चीज़ों पे जो डिपेंडेंसी होती है, तीन चीज़ें हमें पुरुष को स्त्री का दास बनाती हैं। जब हम इन तीन चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं तो हम फ्री हो जाते हैं, तब हमारे संबंधों का आधार बदल जाता है। यदि हमारे अंदर काम भोग की लालसा समाप्त हो जाए, यदि हमारे अंदर किसी को डोमिनेट और पजेस करने की अपनी प्रॉपर्टी के रूप में ये भाव समाप्त हो जाए, और यदि हमारे अंदर हम आत्मनिर्भर हों कि हम घर आए तो पत्नी का प्रतीक्षा नहीं कर रहे कि वो चाय बनाए, बल्कि हम कहें कि चलो मैं तुम्हारे लिए भी चाय बना देता हूँ, तो हम वास्तव में फ्री हो जाएंगे और एक अलग प्रकार के प्रेम का अनुभव करेंगे। वो प्रेम बंधन नहीं होगा, बल्कि परस्पर एक दूसरे को सहायक बनेगा। उसी प्रकार से स्त्रियां भी तीन कारणों से पुरुष की दास होती हैं। एक, उनके अंदर मातृत्व की भावना, कि माँ बनना इसका एक गौरव और इत्यादि जो भी उससे जुड़ा हुआ है। माताजी आश्रम में जब लड़कियों के मन में ये भाव आता था तो कहती थी, तुम डिसाइड करो तुम क्या चाहती हो, तुम अपने शरीर को पुराने क्रिएशन के प्रति लेंड करना चाहती हो या टुवर्ड द न्यू क्रिएशन। तो पुराना क्रिएशन मातृत्व की भावना से वही पैटर्न पे चलता जाता है। दूसरा, वो कहती हैं अट्रैक्शन टुवर्ड्स द मेल एंड हिज स्ट्रेंथ, पुरुष के शक्ति की ओर, उसके बल की ओर एक आकर्षण जो होता है। और तीसरा होता है जहाँ वो सिक्योरिटी चाहती हैं, इकोनॉमिक और जो घर से जो सिक्योरिटी मिलती है। अब बहुत अच्छा है, समाज ही ऐसा बदल गया है कि स्त्रियाँ तो मुक्त हो रही हैं, क्योंकि अब सिक्योरिटी के लिए उनको ज़रूरत नहीं है। और आजकल लिविंग इन रिलेशनशिप आ गया है, तो मातृत्व भी, माताजी ने बहुत पहले कहा है कि फैमिली सिस्टम विल ब्रेक, और इसका जो अपना औचित्य है वो समाप्त हो गया है। पहले ये आवश्यक था क्योंकि ये हेल्प करता था, अब ये बाधक बन गया है विकास में, विशेषकर स्त्रियों के। तो ये फैमिली सिस्टम जैसे चल रहा था परंपरागत, वो टूट जाएगा और प्रेम का, मानव संबंध का एक नया आधार धरती पर स्थापित होगा। और उस आधार के ऊपर बार बार अगेन शेरविंद के पत्र हैं कि हम इन चीज़ों को सेक्रेट समझते हैं, पवित्र समझते हैं। हम ये नहीं चाहते कि मित्रता, लव, अफेक्शन हर कदम पे टूट जाए, क्वेरल हो, झगड़ा हो। इसलिए हम ये नहीं चाहते कि पुराने आधार पर हम संबंध जोड़ें। पुराना आधार क्या है? अहंकार और डिजायर का आधार। बल्कि एक नए आधार पर संबंध जोड़ें जहाँ पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे को एक मित्रवत, क्योंकि दोनों ही अपने अपने ढंग से योग यात्रा पर हैं, ईश्वर की यात्रा पर हैं। चाहे एक सचेत है या नहीं सचेत है, उससे फर्क नहीं पड़ता, भगवान सबके अंदर है और अपने अपने ढंग से आगे ले जा रहा है। इस भाव से वे जीवन जिए कि दोनों का जो बेस है रिलेशनशिप का, वो आध्यात्मिक चेतना और आध्यात्मिक गोल में हो। सो दैट वॉज दी इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स। और इसमें क्या चीज़ साथ चलेगी, क्या छूट जाएगा, कौन साथ चलेगा, कौन छूट जाएगा, इस बात पे मन को पीड़ित या चिंतित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस यात्रा में ऐसा होगा। खासकर जब ये गाड़ी द्रुत गति से चलती है, इसको आई यूज़ दिस वर्ड, इट इज़ इवोल्यूशन फास्ट फॉरवर्ड, तो कई जन्मों के संबंध, कई जन्मों के अनुभव एक जन्म में कंप्रेस हो जाते हैं। कुछ चीज़ें, कुछ व्यक्ति साथ चलेंगे, कुछ समय तक साथ चलेंगे, छूट जाएंगे, कुछ छूटेंगे, कुछ जुड़ेंगे, और कुछ शायद एक हो जो अंत तक चले, और वो एक केवल भगवान है, लास्ट तक वही चलता है। तो अगर हमें मूल चीज पता है कि हमारा लक्ष्य ईश्वर है, कोई मनुष्य नहीं है, मानव संबंध जीवन का लक्ष्य नहीं है, तो फिर कहीं पर भूल होगी नहीं, क्योंकि वो हर चीज उनकी तरफ रास्ता बन जाएगी। उसमें हमको कोई चीज हटानी नहीं है, छोड़नी नहीं है बाहर से, परंतु अंदर से हमको हर चीज को टर्न कर देना है टुवर्ड्स द डिवाइन जर्नी। सो दिस वाज द वन क्वेश्चन, सेल्फ कंसेक्रेशन और सरेंडर में क्या अंतर है? सेल्फ कंसेक्रेशन में हम जीवन अपने हिसाब से जीते हैं, लेकिन भगवान को समर्पित करते हैं। मैं गाड़ी खरीदूंगा, अपने लिए खरीदूंगा, अपने कंफर्ट में के लिए खरीदूंगा, लेकिन भगवान के नाम लेके उसको चलाऊंगा, भगवान को समर्पित करूंगा कि ये गाड़ी समझ लीजिए कि आपकी है, ले रहा हूँ मैं अपने उसके लिए, मेरे संकल्प मेरे अपने होंगे लेकिन उस संकल्प में निष्काम भाव होगा। संकल्प और चेष्टा मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ईगो चाह रही है उसको करना, बिजनेस कर रहा हूँ सक्सेस पाने के लिए, धन जोड़ने के लिए, लेकिन उस बिजनेस को मैं उनको जब ऑफर करता हूँ, कॉन्सेक्रेट करता हूँ, तो मैं निष्काम भाव से करूँगा, उसमें सफलता मिलेगी या विफलता मिलेगी, दोनों ही भाव में मैं समभाव मेंटेन करूँगा क्योंकि वो भगवान के हाथ में है। लेकिन सरेंडर तब होता है जब हम इवन हमारे संकल्प चेष्टाएँ सब कुछ भगवान देंगे, भगवान चलाएंगे। ये बहुत कठिन है। उस इनफैक्ट गीता में बड़ा सुंदर एक शब्द है, सर्व संकल्प सन्यासी। चेष्टाओं के लिए भी, कर्म के लिए भी हमारे अंदर वे ही संकल्प देंगे और ऊर्जा देंगे, शक्ति देंगे, दिशा देंगे, गोल देंगे, और उसमें मैं किसी चीज से जुड़ा नहीं रहूंगा अटैच होकर के। आज उन्होंने ये दिशा दी है, कल एक दूसरी दिशा दे सकते हैं। आई विल बी फेथफुल टू द फॉलोइंग। उसके लिए बहुत अधिक चैत्य सत्ता का विकास चाहिए। सेल्फ कॉन्सेक्रेशन हमारे ह्यूमन रीच के अंदर है। सरेंडर जब पक जाता है अंदर में साधक और चैत्य काफी बाहर आ जाता है, तब समर्पण सिद्ध होता है। संपूर्ण समर्पण आइडियल है। समर्पण की महत्ता क्या है? एक तो वो चीज भाग छूट गया शायद सब्जेक्ट में, ये भी था कि समर्पण से हमारे चेतना का विकास और हमारी पर्सनालिटी का विकास कैसे होता है। तो पहली चीज तो हम विकास होता कैसे इन जनरल अगर लें तो, विकास होता है कर्म के द्वारा, पहली चीज, क्योंकि कर्म के द्वारा हम कठिनाइयाँ आती हैं, कठिनाइयाँ हमारे अंदर शक्ति को बढ़ाती हैं, और अगर एक सीमा पर हम पहुंच जाते हैं अपनी शक्ति की तो हम वहां पे रुक जाते हैं। इसको बड़े सुंदर मर्फी लॉज है ना, उसमें बड़े फनी फनी लॉज हैं, उसमें एक लॉ है कि एक सीलिंग लिमिट आती है जहाँ पर हम हमारा एफर्ट रुक जाता है। किसी भी चीज़ को अगर हम वजन उठा रहे हैं तो हम एज ए चैलेंज लेकर करते रहते हैं, एक टाइम आता है जब वो हमारे अल्टीमेट कैपेसिटी है और हम वहाँ रुक जाते हैं। उसी प्रकार से हम परीक्षा में पास होना चाहते हैं या अच्छा करना चाहते हैं तो हम अब हमारी कैपेसिटी बढ़ती जाती है, मेमोरी की जो भी चीज़ उस चीज़ में चाहिए वो बढ़ती जाती है, और इस प्रकार से कर्म के द्वारा हमारी प्रकृति का विकास होता है। लेकिन इस प्रकृति का विकास कोई आवश्यक नहीं कि इसके द्वारा हमारे आत्मतत्व का भी विकास हो। थोड़ा विकास तो होता रहेगा क्योंकि वो जुड़ा हुआ है, उस एक्सपीरियंस के थ्रू कोई ना कोई चीज़ उसको मिलती रहेगी, लेकिन रियल विकास अंदर से बाहर की ओर है। अगर आत्मतत्व का विकास होगा तो हमारी पर्सनैलिटी का विकास होगा, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि कई सारी क्षमताएं हमारे अंदर सुप्त अवस्था में हैं। किस लिए सुप्त अवस्था में है? क्योंकि हमारे अंदर आत्मतत्व जागृत नहीं हुआ है, और जब हम आत्मतत्व विकसित होता है समर्पण के द्वारा तो वो क्षमताएं हमारे अंदर उसको मैच करने के लिए, मेल खाने के लिए विकसित होती हैं। इसका एक साधारण उदाहरण ले लें। रामायण में हम लोग लक्ष्मण जी के बारे में सुनते हैं कि वो सोते नहीं थे, वो जितेंद्रिय थे और साथ में उन्होंने निद्रा पर अपनी विजय पाई हुई थी। अर्जुन के बारे में भी ऐसा कहा जाता है। चंपकलाल जी के बारे में हम लोगों ने देखा है कि उन्होंने निद्रा पर, खान पीन इस पर विजय पाली थी। प्रणबदा माता जी ने उनको कहा कि तुम बस मेरे पास रहना, जब श्री अरविंद ने शरीर छोड़ा था तो वो सब समय माँ के पास रहते थे, खाली आधे घंटे के लिए वो जाते थे स्नान इत्यादि करने, निद्रा नहीं कुछ नहीं कैसे करते थे वो। अब ये इसलिए ये कैपेसिटी है व्यक्ति के अंदर, लेकिन ये कैपेसिटी तब विकसित होती है जब हम अपनी चेतना, अपने कर्म को, अपनी चेष्टाओं को भगवान से जोड़ देते हैं, तो वो उसमें एक नई संभावना प्रकट करते हैं। अब एक मेडिकल फील्ड में ले लीजिए कि एक है डॉक्टर, वो नॉर्मल कोर्स में उसने एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी जो भी है उसको पढ़ाया और वो उसके अनुसार काम करता है, तो उसकी एक सीमा है, दवा लिखेगा आगे उस व्यक्ति के ऊपर है और डेस्टिनी है। लेकिन अगर वो अपने इस कर्म को भगवान की सेवा के रूप में करेगा तो उसके अंदर उन ऊर्जाओं का, उन क्षमताओं का विकास होगा जो इसके अतिरिक्त एडिशनली जो मरीज को ठीक होने में सहायक होंगी, वो शक्तियाँ, वो ऊर्जाएं उसके अंदर विकसित होने लगेंगी। या अगर कोई क्लास ले रहा है तो नॉर्मली हम लोग उसके लिए प्रिपेयर करते हैं मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्कॉलरली ढंग से, और उसके बाद भी कितनी कठिनाई होती है, पूरे चिट्स बना करके ले जाना होता है। बच्चे तो वहीं से सीखते हैं ना, लोग कहते हैं बच्चे को कि तुम फर्रे क्यों ले जाते हो, शिक्षक भी तो यही करता है, रोज पढ़ा हुआ उसका सब्जेक्ट है फर्रे ले जा करके क्लास में खड़ा होकर उसमें से नोट्स कंसल्ट करके पढ़ाता है, इट्स द सेम थिंग। तो चिल्ड्रन लर्न किए इतना कुछ करके अगर इसको अभी भी कंसल्ट करने की जरूरत है तो बच्चे तो एग्जाम में सो। लेकिन जब आदमी इसी कर्म को भगवान का कर्म मानकर करता है तो उसके अंदर स्वतः ही वो ज्ञान अंदर से प्रकट होता है, और कौन सी भाषा किस प्रकार से वो ज्ञान दिया जाएगा वो सब कुछ उसके अंदर प्रकट होने लगता है, क्योंकि उसने अपनी पर्सनल एफर्ट को ईश्वर के साथ जोड़ दिया। कल की ही बात है, किसी ने मुझे ईमेल लिखा, ईमेल में ये था कि मैंने उस व्यक्ति को सजेशन दिया कि तुम ड्रीम्स के ऊपर कुछ लिखो क्योंकि तुम्हारी ड्रीम्स की इंटरप्रिटेशन बड़ी अच्छी है जो हमारे इससे। तो उसने कहा, आलोक दा आप सच में चाहते हैं कि मैं लिखूं, मुझे तो लगता नहीं कि मैं ये सब कर सकता हूं, मैं इंटरनेट से जा करके मटेरियल इकट्ठा करती हूं क्योंकि आप तो बिल्कुल अलग ढंग से करते हो, मेरे से तो ये सब होगा नहीं, मैं इंटरनेट से इकट्ठा करूंगी, किताब पढ़ूंगी, लिखूंगी। तो मैंने एक लाइन का उत्तर दिया, नहीं तो मैं क्या करूँ, उसका प्रश्न था मैं क्या करूँ। तो मैंने उत्तर दिया कि तुम ऐसा करो, तुम ड्रीम्स के ऊपर लिखने के लिए मन में संकल्प लो, स्टेप टू बैठो माता जी से प्रार्थना करो कि मुझे लिखना है, माइंड को ब्लैंक करो, स्टेप थ्री लिखना प्रारंभ करो, पहला सैंपल मुझे भेज दो देखने के लिए। सो इट इज रियली ट्रू कि इट कैन वर्क, क्योंकि उसके अंदर वो सारा जो भी ज्ञान बाहर प्रकट हुआ है, कैसे प्रकट हुआ है, वो आत्मान्वेषण द्वारा प्रकट हुआ है, उसी को लोगों ने अप्लाई किया है। तो वो सब ज्ञान हमारे अंदर है, मूल सिद्धांत रूप में अंदर है, और अगर हमारी चेतना उस दिशा में मुड़ेगी तो वो ज्ञान अपने अंदर प्रकट होगा हर क्षेत्र में। तो जो जो क्षेत्र में हम हैं उसमें जब हम सरेंडर करके उस चीज को करते हैं, तो माता जी कहती है ट्रू सरेंडर एनलार्जेज यू, एग्रेंडाइजेज यू, ये शब्द माने यूज किया है। हनुमान के अंदर वे शक्तियां जाग गई, सब कुछ भूल गए थे, बड़ी सुंदर स्टोरी है ना कि हनुमान जब तक उन शक्तियों का दुरुपयोग करते थे, साधु संन्यास भी दुरुपयोग नहीं था, नकली साधु संन्यासी की दाढ़ी नोचना, उनसे उल्टे सीधे प्रश्न करना ठीक करते थे, लेकिन कहीं कहीं वो ज्यादा चले जाते थे, ओवरबोर्ड, तो सूरज को मैं खा लूंगा, तो उनको शक्तियां लुप्त हो गई, श्राप लग गया इंद्र का, वो ऋषि का। लेकिन वो शक्तियां कब जागृत हुई, ये शक्तियां हर एक मनुष्य के अंदर, दैट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, हर किसी के अंदर दिव्यत्व मौजूद है और दिव्य शक्तियां मौजूद हैं, लेकिन वे सब लुप्त हो गई हैं क्योंकि हम उनका दुरुपयोग करते हैं, उसको ईगो के लिए यूज करते हैं। पर जब उनके सामने कार्य आया भगवान के लिए, उनको छलांग लगानी है, तो पहले कहते हैं मैं तो नहीं कर सकता हूं। फिर जामवंत के वचन सुहाए, उन्होंने कहा कि तुम सब कर सकते हो, तुम्हारा जन्म ही इसीलिए हुआ है, और तब कितना सुंदर वर्णन है उसमें, और क्या करना है उसके लिए, अपने हृदय में राम को धारण करो और छलांग लगाओ। तो दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी कि जितना अधिक हम भगवान को समर्पण करते हैं जिस भी क्षेत्र में, जिस भी ऊर्जा को, वो उनके स्पर्श से शुद्ध होती है, वो उनके स्पर्श से परिपक्व होती है, और वो ही उनके स्पर्श से अपनी ही दिव्य रूप में रूपांतरित हो जाती है। यही चीज मानव संबंध में भी लागू होती है, सिंस वी वेर टॉकिंग अबाउट इट, हर एक मानव संबंध वास्तव में दिव्यता के साथ आत्मा के संबंध की एक छाया है पृथ्वी पर। हम जितने प्रकार के संबंध जोड़ते हैं धरती पर, माता पिता, बंधु मित्र सखा, पति पत्नी, लवर बिलवेड, सेवक मास्टर, शिष्य गुरु, ये सब संबंध वास्तव में हमारी आत्मा भगवान के साथ जोड़ती है। और यहां तक कि रिवर्स भी, भगवान इस हद तक चले जाते हैं कि वो बिल्कुल यहां पर जैसे मास्टर और सेवक, वो ये भी कर लेते हैं, ये संबंध जोड़ लेते हैं, ये उनकी ग्रेटनेस है। बच्चा बन जाते हैं पुष्टि मार्ग में, तो व्यास जी वहां कितना सुंदर, यही तो है कि भगवान बच्चे की तरह है, आप बच्चे की तरह संबंध जोड़ोगे, तो बच्चे की तरह है तो आप भगवान से कुछ मांग नहीं सकते, क्योंकि बच्चे को तो आप देने का आपका अधिकार है, मांगने का नहीं है। तो वे सारे संबंध जो हम धरती पर जोड़ते हैं वो वास्तव में एक छाया है उस संबंध की जो हमारी आत्मा ईश्वर के साथ जोड़ती है। लेकिन इसका एक रिवर्स सत्य भी है, क्योंकि वो इसकी छाया है, ये छाया उसके मूल रूप में रूपांतरित हो सकती है। तो पति पत्नी का संबंध, मित्र का संबंध, परस्पर प्रेमी का संबंध, मास्टर और सेवक का संबंध, ये सब संबंध में माता पिता का संबंध, हम उस सत्य को उद्घाटित कर सकते हैं। बहुत कठिन है, इट इज द स्टेज 3 ऑफ योगा, बट इट इज पॉसिबल। और इसी चीज को हमारे यहाँ जब सतीत्व की परिकल्पना की गई, जहाँ नारी सती स्वरूपा एक पति को प्रेम करके वो इतना कुछ प्राप्त कर लेती थी कि वो काल की गति को रोक दे, देवताओं को बच्चा बना दे, दैट इज द ट्रूथ बिहाइंड इट। क्योंकि लव इज लव, जहां भी वो पाया जाता है। बड़े सुंदर इंसान की देखिए कैसे हम लोग हर किसी से सीख सकते हैं। एक बार मैंने ऐसी बातचीत हो रही थी एक ग्रुप से, तो नेचुरली माताजी की पुस्तकों के आधार पर मैंने कहा कि देखो ये हर चीज लव नहीं होती, लव का नाम होती है, ट्रू लव बड़ा रेयर होता है, ये सत्य है। माताजी और शेरविंद ने इस पर बहुत कुछ कहा है। तो एक बच्चे ने मुझसे बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न किया, कहा अलोकदा लव तो लव होता है, लव तो अगर लव है तो ट्रू ही होगा ना, नहीं तो और क्या लव होगा। इट ओपन्ड माय आईज टू ए न्यू रेवलेशन कि बात तो सही है, हम दूसरी चीजों को लव कैसे कह सकते हैं। ये तो उस नाम का बिल्कुल, अगर प्रेम है तो वो सच्चा है तभी वो प्रेम है, नहीं तो प्रेम नहीं है। तो दिस ओपन्स द डोर टू अनदर रिवेलेशन की जितनी भी चीजें हैं हम हर चीज के शुद्ध रूप को प्राप्त कर सकते हैं और उसको दिव्यता में परिवर्तित कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज द योगा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट ए योगा ऑफ अबैंडनमेंट जो एसेटिसिज्म में होता है। और वो शेरविंद के एक पत्र में दिलीप कुमार रॉय को विस्तार से उन्होंने प्रकट किया है। हाँ ये अवश्य है कि उसमें कोई लिप्तता नहीं होनी चाहिए, एट द कॉल ऑफ द डिवाइन हर चीज को आदमी अबैंडन करके चला जाए इसके लिए तैयार होना चाहिए। किसी से वो विकृत प्रकार का मोह अटैचमेंट कि मुझे इससे क्या प्राप्त होगा, ये सब चीजें समाप्त हो जानी चाहिए। तो संपूर्ण समर्पण की महत्ता यही है कि ये हमारे पूरे व्यक्तित्व को विकसित करता है और उसमें एक दिव्यता का स्पर्श लाकर निखारता है, गढ़ता है, और उसको अब भगवान के अनुरूप गढ़ता है। कई ऐसी चीजें जो हमारे अंदर होंगी जो भगवान ले भी लेते हैं क्योंकि वो हमारे लिए जरूरी नहीं थी, वो एक प्रकार का डिस्टॉर्शन थी। कुछ लोगों की बहुत इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, अचानक वो शांत हो जाती है, लेकिन उसकी जगह उनके अंदर इंट्यूशन जागृत होती है। तो कई बार वो चीजें जो हमारे लिए अब आवश्यक नहीं है वो ले ली जाती हैं और उनकी जगह अन्य चीजें भेंट की जाती हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग माताजी की स्टोरी है कि एक कपिल माताजी के पास आया, वो दर्शन करने के लिए और क्यू में खड़ा था। तो माँ ने जब वो आए तो उनको कहा तुम लोग थोड़ी प्रतीक्षा करो, तो उनको किनारे प्रतीक्षा, बाकी सबको माँ जो भी पुष्प देना उसके साथ जो भी अंदर दे रही थी और एक एक क्षण दर्शन करके वो जा रहे थे। ये लोग आधे घंटे वहाँ खड़े रहे, फिर उनको बुलाया माँ ने, उनको भी एक एक पुष्प दिया और वो चले गए। तो चंपकलाल जी ने कहा माँ ये करने की, आपने किया तो वही बाहर से, तो उनको आधे घंटे वहाँ बिठाया क्यों। तो माँ कहती हैं पहले इन दोनों ने अकेले साधना करने की, अलग अलग अकेले साधना करने के लिए इनकी चेष्टाएं थी, तो मैंने इनको वह सब दिया था जो अकेले साधना करने के लिए आवश्यक है। अब ये दोनों साथ चलना चाहते हैं तो वो सब लेके मैंने नई चीजें उनको दी हैं जो साथ साधना करने के लिए सहायक होंगी। सो कई चीजें हमारे जीवन में इस प्रकार की डेवलप हुई हैं जो वास्तव में शायद हमारे लिए आवश्यक नहीं है, शायद बाधक हैं, और समर्पण जब हम करते हैं तो वे चीजें लेकर उनकी जगह नई चीजें भगवान डालते हैं जो वास्तव में हमारे लिए आगे यात्रा में सहायक है। सो इट रियली चेंजेस अस पूरी तरह, हमें जैसा भगवान के अनुरूप गढ़ना। अब तक तो हमारा विकास इस तरह से होता है जैसे हमारे माता पिता, समाज, शिक्षक ये सब चाहते हैं, तो उस प्रकार से हम गढ़े जाते हैं। ये सब तो अज्ञान के टीचर्स हैं, तो उनके हिसाब से उनको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा कर देते हैं। लेकिन जब भगवान टच करते हैं तो कई बार वो बिल्कुल उल्टा पुल्टा भी कर देते हैं। वही बच्चे जो बड़े ओबीडियंट थे अचानक प्रश्न करते हैं ऐसा क्यों, क्योंकि भगवान का टच आ गया है, अब वो एक नए ढंग से उनके अंदर चेंज होना है। तो माता पिता, समाज, शिक्षक एक ढंग से इस पात्र को गढ़ते हैं, प्रकृति निम्न प्रवृत्तियों के लिए इस पात्र को गढ़ती है, किंतु जब भगवान गढ़ते हैं तो उसको एक दिव्य प्रयोजन के लिए पात्र को गढ़ते हैं। वे शक्तियाँ डालते हैं, वे वृत्तियाँ डालते हैं, वे चेष्टाएँ डालते हैं जो हमारे भगवत प्राप्ति में सहायक होंगी। लर्न टू रिलैक्स एंड लेट गो, विस्तार से अपने दायित्वों की प्रायोरिटीज और साधना में कैसे बैलेंस करें, साइकिक बीइंग से कॉन्टैक्ट हो इसके लिए क्या आवश्यक है, प्रभा की अभीप्सा में क्या अवरोध हैं और इन्हें कैसे हटाया जाए। तो लर्न टू रिलैक्स एंड लेट गो, बुद्ध की दो कहानियां हैं, बड़ी सुंदर कहानियां हैं। पहला तो वो कई वर्षों तक नाना प्रकार के कष्ट सहकर तन कर साधना कर रहे थे लेकिन प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, जो भी हो जिस भी उससे निकले थे, वो अज्ञान से मुक्ति, मृत्यु से मुक्ति। तो कहानी होती है, एक जगह वो है वन देवी, दूसरी जगह सुजाता नाम से एक कन्या, वो उनको आती है और खीर देती हैं। और उस समय वो एक चीज कहती हैं, बड़ी सुंदर चीज, कि धनुष की डोर को इतना भी ना खींचो कि वो टूट जाए और इतना ढीला भी ना छोड़ो कि उससे तीर मारा ही ना जाए। तो कई बार माता जी की एक प्रार्थना में भी बड़ी सुंदर बात है, माँ कहती है कि दिस थॉट ऑफ ऑलवेज डूइंग द राइट थिंग ऑल्सो एक्ट्स लाइक ए बैड विल। मैं सही करूँ, मैं सही करूँ, क्योंकि हम अज्ञान में हैं, हमको खुद नहीं मालूम सही गलत। ये एक बड़ी रिलेटिव चीज है, कहती है इट एक्ट्स लाइक ए बैड विल ऑन द सिस्टम एंड वेल्स द प्रेजेंस। हर समय मैं ऐसे करूँ वैसे करूँ, तन के बहुत अपने आप को मैं साधना करूँगा तो हर चीज में ऐसी करूँ जो बिल्कुल साधना के दृष्टि से सही हो। ये भाव अच्छा है लेकिन इस भाव के अंदर एक साथ में एक समर्पण जुड़ा होना चाहिए ताकि वो रिलैक्स रहे। मेरी मैं चंपक लाल जी के साथ 20 दिन अवसर मिला था, एक विशेष समय दोपहर में वो विश्राम करते थे, उस समय बैठने का बेसिकली बैठना था कि कोई कोई अगर ज़रूरत हो कोई बात हो तो। मुझे यंत्र के रूप में एक मक्खी भगाने का एक यंत्र दे दिया गया कि अगर मक्खियाँ आ रही हो तो उसको भगाना है। अब मैंने पढ़ रखा था चंपक लाल जी ऐसे सेवा करते थे वैसे सेवा करते थे, मैंने कहा मुझे एक मौका मिल गया है, मैं भगवान को तो नहीं तो इनकी तो सेवा करूं ऐसे। तो तन के बैठ गया, वो हाथ में ऐसे पकड़ा था कि भीम की गदा या अर्जुन की गांडी हो, कि मक्खी दिखाई नहीं दी, कौरव सेना की तरह मैं उसको प्रहार करूंगा। और एकाध बार किया भी मैंने, पर बाय एंड लार्ज जरूरत नहीं पड़ी, एकदम तन के मेरा पूरा ध्यान इस पर था और मक्खी पर था। आज चंपक लाल जी विश्राम कर रहे थे, उन्होंने कुछ बाहर से नहीं देखा, पर अगले दिन मुझे बताया, किसी के थ्रू मैसेज दिया कि इतना सीरियस होके बैठने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स। तो पहला लेसन मुझे अब मेरे सामने समस्या आई, अगर मैं रिलैक्स करूं तो मेरे सेवा में कहीं कहीं मक्खियां आ गई तो मैं क्या करूंगा। रिलैक्स तो उन्होंने कह दिया लेकिन अगर रिलैक्स में कहीं कोई मक्खी दुर्ग के अंदर प्रवेश कर जाए, तब मैंने धीरे धीरे वो चीज ज्ञान भी आया अंदर में कि व्हाट इट मींस टू रिलैक्स। इट इज ए स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जहां तुम विजिलेंट हो, ऑब्जर्वेंट हो, लेकिन उसके लिए एंग्शियस नहीं हो। मेरे अंदर एंग्जाइटी आ रही थी कोई मक्खी चली ना जाए, चली गई तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी, वो एक मैं अपना बेस्ट करूं, कोई दोष ना रहे मेरे अंदर मेरी सेवा में, ये सब ईगो के कारण मेरे पूरे व्यक्तित्व में एक संकुचन आ गया था। रिलैक्स का मतलब था विजिलेंट रहूं, लेकिन ये भी नहीं कि एंग्शियस हो जाऊं इस चीज के बारे में कि अगर कोई चली गई तो इतना बड़ा अपराध हो गया। माता जी किस तरह से डील करती थी साधकों के साथ, कई बार जब वो इतने टेंस हो जाते थे, बंसीधर जी बताते हैं कि एक बार उन्होंने खाली पेपर पढ़ा हुआ था बाथरूम के अंदर, तो उन्होंने उसको सोचा है खाली पेपर है, छोटा सा टुकड़ा था एक्चुअली पेपर का टुकड़ा, लेकर के कहा ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो उठा के कचरे में फेंक दिया। माता जी बाथरूम गई, फिर बाहर निकल के काली की तरह Who has thrown that paper? वो पेपर किसने? Mother, I have done it. Why did you do it? वो कई बार माँ बाथरूम में बहुत सारे काम करती थी, नोट्स, लेटर्स की रिप्लाई, ऑल दिस ही वाज वर्किंग देयर। तो वो तो एकदम थर थर कांपने लगे कि कागज का एक टुकड़ा है छोटा सा, अच्छा नहीं करूंगा आगे, हो गई बात। एक दिन वो बाथरूम साफ कर रहे थे तो माँ की किसी ने गिफ्ट किया होगा परफ्यूम की बॉटल नीचे गिरी और टूट गई। अब तो उनका गला सूख गया कि अभी क्या होने वाला है, पेपर को लेके मुझे इतना कुछ हुआ, अच्छा वो परफ्यूम की बॉटल छिप भी नहीं सकती, स्मेल हुई। बाथरूम खुला तो माँ ने देखा परफ्यूम की बॉटल टूटी हुई है। माँ स्माइल करके कहती है, दीज थिंग्स हैपन, दीज थिंग्स हैपन, इट डजंट मैटर। देखिए उसके पीछे क्या चीज थी, वो ये नहीं कह रही थी कि तुम थोड़ा विवेक से करो, वो पेपर है, उसकी उपयोगिता है, उसको यूज किया जा सकता है। वो इस चीज को इंस्टिल इसलिए नहीं कि कोई चीज, अरे बॉटल टूट गई, कई बार लोग इतने ध्यान से करते हैं कि वो चीज हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर भय, उसके अंदर एंग्जाइटी। गोलकुंड में एक बार माँ जब जाती हैं तो अचानक एक सीढ़ियों पर बैठ जाती हैं। जिन लोगों ने देखा है, नहीं देखा है तो अवश्य देखना चाहिए, माता जी का इट्स योगा इन द मेटीरियल वर्ल्ड। तो थोड़ी देर बैठी रही, फिर उठ के चलने लगी। तो लोगों को लगा माँ के ऊपर कोई थकान हो गई, क्या हो गई माँ, क्या हुआ, पानी लाए, ये लाए। नो नो नो, नथिंग, पीपल हैड थ्रोन सो मच फियर हियर दैट आई हैड टू क्लीन इट। फियर कैसे लोग थ्रो करते थे, इतनी स्मूथ उसकी स्टेप्स है, हम गिर ना जाए ये बोलते हुए चल रहे थे। तो साधना में भी कई बार साधक इस प्रकार से, मैं गिर ना जाऊं, मैं गलत ना कर दूं, मेरे साथ ये ना हो जाए। जब निरोधा उनसे पूछते हैं, ये तो नेचुरल है, हम सिद्ध नहीं है, ये मान के चलना कि गलतियां नहीं करेंगे, ये तो इवन सिद्धार्थ डू इट, ये नहीं कि इट शुड बी ए जस्टिफिकेशन कि अच्छा ठीक है, पर इट विल हैपन इन द कोर्स ऑफ साधना, क्योंकि हम लोग अयोग्य से योग्य और योग्य से साधना, साधक से सिद्ध, ये जर्नी है अज्ञान से प्रकाश की ओर। तो नरोत्ता कहते हैं, वो जब कुछ हो जाती थी उनसे गलती जो भी कहते थे, वो लेमेंट करते थे, डिप्रेशन में चले जाना। शेरविंद कहते हैं कि तुम अजीब हो, अरे सड़क पर कोई गिर जाए तो क्या करना चाहिए, उठना चाहिए, पैंट को झाड़ना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। थोड़ी क्यों वहां पर खड़ा होकर के रोने लगे कि मैं क्यों गिर गया, या कुछ लोग धरती पे पीटने लगते हैं, तुम गंदी हो, तुमको मार रहे हैं। कहते हैं ये सब करने का क्या फायदा है, वाई कंप्लेन, गोइंग टू गिल्ट, गोइंग टू डिप्रेशन, डिस्पेयर। कल भी वही कहानी की बात हो रही थी, जिन सज्जन ने सुसाइड की प्रयास किया। एक सहज भाव से अनफोल्डिंग, हम जिस ओर जा रहे हैं वो आनंद में है, बहुत कृपा और करुणा से भरा हुआ है। वो ये देखकर अगर वो कभी डांटे भी तो उसे बहुत प्यार होता है। अमृता इतनी भक्त थे माँ की, और बहुत डांट अमृता को सुनाई पड़ती, और वो हर चीज में सिर नीचे करके मुस्कुराते रहेंगे। तो लोग पूछते थे, पहले माँ से पूछा, माँ आप इसको, हाँ हाँ वो मेरा प्रिय बच्चा है, मैं उसके साथ ऐसे कर सकती हूँ। और अमृता से पूछते पूछते मुझे तो बड़ा मजा आता है, मैं तो माँ की डांट सुन के लगता है माँ मुझे प्यार करती है। और इतना वो प्यार करते थे, और माँ कई बार टॉफी फेंक रही है तो अमृता उसको ऐसे पकड़ दें मानो टॉफी नहीं कुछ और पकड़ दें, टॉफी छूट जाएगी। तो माँ कहती है हंस के, अमृत ये तुम क्या पकड़ रहे हो, तुमको टॉफी पकड़ना नहीं आता। माँ टॉफी आप फेंक रही है तो केवल टॉफी तो फेंक नहीं रही है, साथ में क्या क्या फेंक रही होंगी अकल्ट रूप से, मैं तो वो सब पकड़ना चाहता हूं। भगवान के साथ एक सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ बढ़ना, शेरविंद की एक कहानी है स्वप्न। तो उसमें वो बताते हैं कि हरि मोहन रोज पूजा करता है, नित्य नियम संध्या सब कुछ करता है, और रोज कूड़ता है देखकर सामने तीन कोड़ी सील, जो एक नंबर का बदमाश है, उसका तिमंजला मकान है। तो एक दिन कहते हैं भगवान की पूजा करते करते भाव आता है, केष्टा तू मेरे पास आ गया ना, हाथ पकड़ के बांध के पीटूंगा, तूने क्या किया है, मैं रोज पूजा करता हूं, मेरा ये हाल है, खाने के लाला पड़े, सामने तीन कोड़ी सील का मकान, मिल गया ना तो पीटूंगा। श्री अरविंद कहानी में बताते हैं केष्टा प्रकट हो जाते हैं बच्चे बन के, कहते ये ले मेरे हाथ, तो घबरा जाते, नहीं नहीं प्रभु मेरा ये मंशा नहीं थी। अरे प्रभु क्या, मुझे बड़ा आनंद आया, कोई तो है जिसने मुझे सखा के रूप में ट्रीट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई मेरे साथ खेले, कोई खेलते ही नहीं है, कबड़ के अंदर बंद कर देगा, गद्दी पर बिठा देगा, धूप बत्ती दिखाएगा, तूने मुझे सच में तो मेरे साथ खेलना चाहता है, मुझे बड़ा आनंद आया। और तब वो दिखाते हैं कि तीन कोड़ी सील की मनोदशा क्या है। कहते हैं अभी तो बनना चाहता है। नहीं नहीं यही ठीक है, पूरे कर्म की थ्योरी उसमें है। मूल चीज ये है कि बड़ा आनंद का रास्ता है। माँ कहती हैं द सन ऑफ डिवाइन लाफ्टर, वो हमको ले जा रहा है। जब भी कोई चीज हो जाए जो हमें लगता था कि हमसे नहीं होनी चाहिए थी, और माँ अपना एग्जाम्पल देती हैं, बरसों तक माँ कहती हैं मैं इस बात से स्वयं पीड़ित होती थी कि मेरे से कुछ गलत ना हो जाए। उनकी पहली प्रार्थना बड़ी सुंदर है, कहती हैं जब कुछ गलती हो जाए तो हमारे अंदर गिल्ट का भाव नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि हे प्रभु मैं तेरे अंदर अपने को डाल रही हूँ, एंड स्टार्ट नेस्लिंग इन द डिवाइन आर्म्स। और माँ कहती बरसों तक मैं इस बात से पीड़ित होती थी, बाद में मैंने जाना कि ये वास्तव में ये दिव्य की ओर बढ़ने का तरीका नहीं है, ये एक एडवर्सरी है जो हमारा पीछा करता है। उसका क्या काम होता है, केवल ये पॉइंट आउट करना, ये गलत है, वो गलत है, ये मत करो, वो मत करो। साधना इज नॉट दैट, करते करते निषेध करके निर्वाण में चले जाओ। माँ कहती है कि ये निर्वाण का रास्ता, फिर अंत में कुछ भी ना रहेगा। ये कम कर दो, ये घटा दो, अरे मैंने चीनी थोड़ी ज्यादा ले ली, मिठाई खानी चाहिए थी कि नहीं खानी चाहिए थी, यहां मुझे जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, टीवी ऑन करके मैंने अगर ये फिल्म देख ली बहुत बड़ा पाप किया, सारी रात पाप भावना से नहीं सो रहा है, अगले दिन ध्यान नहीं कर पाया पाप भावना से ग्रसित होकर। दिस इज नॉट द वे, क्योंकि जब हम इतना तन जाएंगे तो कुछ रिसीव ही नहीं करेंगे। टू रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, इट वाइडेंस अस, रिलैक्स इन द लाइट। माँ माँ के साथ बैठो, मन कर रहा है अगर टीवी देख रहा है व्यक्ति नहीं उसको वो कर पा रहा है, बैठ माँ आप भी बैठो ना, मुझे बताओ क्या समझाओ, क्या दिखा रहे हैं ये लोग, आप पार्टी बाप पार्टी कौन सी पार्टी क्या है, माँ नहीं समझ आ रहा मुझे, साथ में बैठ करके वो रिवील करेंगी अंदर के ट्रुथ्स, तब बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि हम बाहर से नहीं देखेंगे अंदर से देखेंगे। माता जी आश्रम में सिनेमा दिखाया जाता है हर सैटरडे को प्रायः, कौन कौन सी पिक्चर है, केवल भक्त प्रहलाद नहीं, मिशन इम्पॉसिबल, स्पीड, सिफेक्ट, माताजी के समय ब्लू लगून, इफ समबडी हैज सीन द मूवी, बड़ी फेमस मूवी थी उस समय की, ये फिल्म दिखाई जाती है। माताजी से किसी ने पूछा हमारा प्राण तत्व, कहती नहीं कोई आवश्यक नहीं कि तुम्हारा प्राण तत्व उसमें इंटरेस्ट ले, तुम मन तत्व से देख सकते हो, बहुत कुछ है जो उससे सीख सकते हो, ग्रो कर सकते हो। तो ये एक अलग मनोदशा है जिसमें हमको प्रवेश करना है, जहां हमको तन के नहीं जाना है, सीना तान के जाना है। क्यों? क्योंकि हम उनके हैं, और जब उनके हैं तो कौन सी चीज हमको रोक सकती है। नरक में भी गिर के आदमी निकाल लेगा, ये एक्सक्यूज नहीं है कि नरक में गिरो, पर वो निकाल लेगा। बड़ी सुंदर एक शेर है इस्लामिक कंटेक्स्ट में, जहाँ बहुत ज़्यादा पाप पुण्य इसका क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में बहुत जाता है, भारतीय मानसिकता में चीज़ नहीं है, ये कंटेमिनेशन से प्रवेश की है, पर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में पाप पुण्य इसका बहुत ज़्यादा है। तो कहता है एक सूफी मिस्टिक, ए शेख क्या पाएगा गुलफिशानी करके, वो कह रहा है तू तो रोज ये फूल चढ़ाना ये चढ़ाना, इससे क्या तुझे मिलेगा। और लास्ट में वो कहता है तो आतिशे दोजक से डराता है उन्हें, कि नरक की अग्नि में रोस्ट हो गए तो आतिशे दोजक से डराता है उन्हें, जो आग को पी जाते हैं पानी करके, जो ड्रिंक फायर, व्हाट इज दैट फायर, जिनके हृदय में अग्नि कुंड जल रहा है। यही चीज रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद के बारे में लोग कंप्लेन करते थे, अरे मालूम है होटल में बैठ करके शराब पी रहा था, वाइन पी रहा था, पास में देयर वर प्रीटी विमेन। तो श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं अरे नरेंद्र उसके बारे में मैं जानता हूं, वो विदेश में जाकर, उस समय तो वो गए नहीं थे, वो तो बाद में गए श्री रामकृष्ण परमहंस के, वो विदेश में जाकर सुंदर महिलाओं के बीच में बैठकर अगर ड्रिंक ले ले और मांस खा ले तो भी वो शुद्ध और पवित्र रहेगा। ये चेतना की अवस्था है, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। एंड ही डिड, ही वेंट अब्रॉड, कितनी कुछ उनके बारे में लोगों ने क्या क्या नहीं कहा कि इन्होंने तो अपना चोला छोड़ दिया, क्योंकि वो नेचुरली वो वहां के अनुरूप ड्रेस पहनते थे, पैंट कोट पहना है उन्होंने, सारी चीजें बिल्कुल, वो अंदर से उनके जैसा कोई सन्यासी नहीं, सो डिटैच्ड, सो कंप्लीटली वैराग्य, दैट वाज हिज इनर स्टेट कॉन्स्टेंटली। माँ भवानी तुम आओ आओ मृत्यु बनकर आओ, है हु कैन से दिस, परंतु बाहर से हर चीजों के बीच रहकर भी. सो दिस इज ए स्टेट ऑफ इनर रिलैक्सेशन जहां हम प्रकाश उन्मुख होते हैं, प्रेम उन्मुख होते हैं, भगवत कृपा उन्मुख होते हैं, तो अपने आप हमारा पूरा बीइंग मातृ उन्मुख होते हैं, वो साथ चलती हैं, हाथ पकड़ के ले जाती हैं उनकी गोदी में बैठकर, तो आनंद तो रहेगा ही, कोई टेंशन नहीं होगी फिर. और साथ में लेट गो, उसकी भी एक बड़ी सुंदर स्टोरी है, कबीर दास ये बुद्ध की स्टोरी है, कि कोई व्यक्ति आया फूल लेकर के उनके सामने, तो जब बुद्ध के सामने आया तो बुद्ध कहते हैं लेट गो, समझ नहीं आया लेट गो, तो उन्होंने फूल गिरा दिए, फूल वूल शायद मना होगा निषेध होगा, फिर अंजलि करके ऐसे खड़े थे, फूल गिरा दिए, बुद्ध ने कहा आई सेड लेट गो, तो उन्होंने देखा क्या लेट गो, हाथ अपने नीचे कर लिए, टेंस हो गए कि पता नहीं क्या गलती कर दी, तो बुद्ध कहते हैं लेट गो. तब उनको ज्ञान होता है कि ईगो दैट हैज टू बी लेट गो. ईगो जो चीजों को पकड़ कर रखती है, चीजें दूर चली जाती हैं फिर भी वो स्मृति से पकड़ कर रखती है. मेरे पास विशेष रूप से जैसे डाइवोर्स के केसेस आते हैं कई बार, तो हम लोगों का तो ऐसे डॉक्टर काम होता है जोड़ना, तोड़ना नहीं, तोड़ने का काम वकील का होता है, पर फिर भी अगर कुछ टूट गया तो अभी क्या करना है. तो मुख्य चीज बाहर से टूटना नहीं होती है. लीगली कितने केसेस में मैंने ये देखा है और ये चीज बताई भी जाती है कि लीगल डाइवोर्स होता है परंतु भावनात्मक स्तर पे स्ट्रिंग्स जुड़े हैं, इसी कारण हेट एंगर प्रेम का ही दूसरा रूप है. असली मुक्ति तब मिलती है जब अंदर में हेट और एंगर चला जाए और एक मित्रता का भाव आ जाए. और ये अब रिकॉग्नाइज हो गया है साइकोलॉजी में कि दो लोग जो डाइवोर्स ले लेते हैं बाद में जब वो फ्रेंड्स बनते हैं तो बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स बनते हैं, क्योंकि दोनों अपने एक दूसरे को स्वीकार करते हैं विद ऑल देयर प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज. तो ये जब स्टेप्स आ जाते हैं तब मैं लास्ट में उनको कहता हूँ, क्योंकि ये एज आई सेड मेरा काम तोड़ना नहीं है, कहता हूँ जब यही अंत में करना है तो अभी भी मित्रवत रह सकते हो, जरूरत क्या है ये सब तमाशा करके अंत में मित्रवत रहने की, अभी भी मित्र की तरह रहो, एक दूसरे को अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल लव देने की चेष्टा करो और अंदर में फ्री रहो. अगर एंगर आ रहा है, घृणा आ रही है, तो प्रेम है, बाहर से तोड़ दोगे अंदर में प्रतिक्रिया होती रहेगी, उसकी गांठें पड़ेंगी और वो गांठें बाद में परेशान करेंगी, पेन बनेगी. तो इनर लिविंग इज द रियल लिविंग. इनर लिविंग बड़ा कठिन होता है, टू सेट ए पर्सन फ्री. अगेन सेम चीज, मृत्यु के बाद लोग दुखी होते हैं, कुछ हद तक स्वाभाविक है, परंतु व्हाट इज द फाइनल एक्ट ऑफ लव, प्रेम का अंतिम एक्शन क्या है, इट इज टू सेट द पर्सन फ्री, स्वतंत्र कर देना, अपने आप से स्वतंत्र करना. ये प्रेम का बहुत बड़ा एक कर्म है जो कर नहीं पाता व्यक्ति. जो चला गया उसको अपने से मुक्त करो, छोड़ो उसको, जा रहा है वो अपनी आगे की यात्रा में है, उसको पीछे बांध के मत रखो पतंग की तरह, तो उड़ नहीं पाएगा, उसको स्वच्छंद आकाश में विचरण करने दो. तो लेट गो हर लेवल पर अप्लाई होता है. ईगो सेंस से हम चीजों को जब बांधते हैं और सच में जब हम अपने इनर बीइंग से एक होते हैं तो बाहर से पकड़ना आवश्यक नहीं होता है. ऐसे संबंध है जहां दूर रहते हैं लोग लेकिन बहुत सुंदर संबंध है, ऐसे संबंध है जहां रोज साथ रहते हैं और रोज प्रार्थना कर रहे हैं करवा चौथ के दिन भी, बाकी दिन भी कब छुटकारा मिलेगा प्रभु. वैसे तो लंबी आयु के लिए अंदर में चल रहा होता है कब छुटकारा मिलेगा इस जीवन से, ऐसा नहीं बोलते हैं पति से या पत्नी से, वो तो गलत है ना, तो पाप माना जाएगा, तो कहते इस जीवन से. कहने का अर्थ यही है, ये जीवन क्या है, यही सब लोग जो मेरे जीवन में हैं इनसे छुटकारा कब मिलेगा. पर प्रॉब्लम क्या होती है, छुटकारा पाके दूसरे जीवन में फिर उसी चीज में चले जाते हैं, क्योंकि छुटकारा किसी व्यक्ति से नहीं पाना है, अपने ईगो सेंस से पाना है, तो ईश्वर के अंदर अपने को डालना है. सो दैट मेक्स इट ब्यूटिफुल. अपने दायित्वों की प्रायोरिटीज, ये एक बहुत ही, सारे प्रश्न बड़े सुंदर हैं, विस्तार के हैं. प्रायोरिटीज कैसे बनाएं, बैलेंस करना, ये सच बात है. कई ऐसे कर्म हम जब भगवान की ओर मुड़ते हैं तो देखते हैं जो हम अब तक करते रहे मैकेनिकली, तो वो तो हम एक बार छूट सकती है, अपने ईगो के कर्म छूट सकते हैं, पर कर्तव्य जो हमारे कर्तव्य हैं पति के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, उन कर्तव्यों को कैसे, तो प्रायोरिटाइज करने से बेटर है उनको अपना ईगो का भार ना समझ के भगवान ने अब तक हमारे जो भी विकास हुआ उसके अनुसार हमारे जीवन में ये लिखा था, ये मान करके उनको भगवान को निवेदित करके चलना इस अभिप्सा के साथ कि हे प्रभु तुम ही जानते हो कि ये क्यों है मेरे जीवन में और तुम ही इसको हटा सकते हो जब उपयुक्त समय आएगा। तो वो कर्म अपने आप हमारे लिए बंधन ना बन के हमारे लिए द्वार खोलते जाएंगे और जब समय आएगा उससे छूटने का तो हम छूट जाएंगे उससे, या तो अंदर में हमारे चेंज आ जाएगा या बाहर ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी कि हमें जरूरत नहीं रहेगी अब उस दिशा में कर्तव्य करते रहने की। इट विल हैपन इन इट्स ओन वे। तो वो हमें, क्योंकि वो कर्तव्यम कर्म है ना, उसको त्याग सकते हैं हम अगर हम बुद्ध की तरह, माँ कहती हैं जो डिवाइन की ओर मुड़ा है उसकी ड्यूटी केवल डिवाइन के प्रति है, परिवार के प्रति नहीं है। तो इफ़ वी कैन डू इट, इट्स वंडरफुल। पर हर व्यक्ति वो कर नहीं पाता और उसके जो रिकॉयल्स होते हैं, रिपरकशन, उसको वो ले नहीं पाता। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक हम ये नहीं कर पाते, और वो तभी संभव है जब हमने जीवन को पूरी तरह भगवान को आत्मोत्सर्ग, उसके लिए नेचुरली इट इज़ बेटर टू बी इन एन आश्रम बिकॉज कठिन है बाहर में इस तरह से करना, तो तब हमको ये हम कर सकते हैं कि जो भी हम कर्तव्य कर रहे हैं उसको केवल भगवान को अर्पण करके। अगर कोई उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, अगर उसके रिटर्न में हमको अवहेलना मिलती है, उपेक्षा मिलती है, तो वो सबको उनके चरणों में डाल देना, उससे अपने को आहत नहीं होने देना, साइकिक बींग से कॉन्टैक्ट हो, ये सब कुछ जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सब कुछ साइकिक बींग से कॉन्टैक्ट के लिए आवश्यक है। श्रद्धा आवश्यक है, समर्पण आवश्यक है, अभिप्सा आवश्यक है, भगवान को निवेदित करके कर्म आवश्यक है, और जितना अधिक हम कंसंट्रेशन आवश्यक है, एकाग्रता, ध्यान आवश्यक है, और जितना अधिक हम ये सब कुछ करेंगे उतना अधिक हम चैत्य के करीब आएंगे। मार्ग में अवरोध, मार्ग में सारे अवरोध अंदर हैं, और सबसे बड़ा जो अवरोध है, सबसे भयानक, सबसे छद्मवेशी, सबसे बहुआयामी, वो है ईगो। सबसे बड़ा अवरोध, सब कुछ छोड़ के ईगो बची रहती है। एक स्टोरी है राजा सिखीध्वज और चुड़ाला की, हमारे ही मिथ्स में है। चुड़ाला जन्म से ही रियलाइज्ड है, वो आदिशक्ति का एक अवतार है, तो बहुत शीघ्रता से ये योग की अवस्थाओं को प्राप्त करती हैं। और राजा सिखीध्वज राजा हैं और विवाह के लिए वो चुड़ाला पर बड़े आकर्षित हो जाते हैं, शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, तो वो विवाह करती हैं। बड़ी सिंबॉलिक स्टोरी भी है प्रकृति और पुरुष की। तो वो चुड़ाला से इसलिए केवल विवाह करते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर है, वो उसके अंदर के गुण, उसके अंदर की आत्म उपलब्धि को नहीं देख पाते हैं। चुड़ाला मैरिज करती है, चुड़ाला उस अवस्था में कि इट डजेंट मेक ए डिफरेंस टू हर, इस संभाव में पहुंच गई है। तो वो जानती है एक समय आएगा जब वो इससे उब जाएगा और वो कुछ और सीख करेगा, तो वो उनके अंदर कोई अंतर नहीं होता, वो आत्म उपलब्धियों में और बढ़ती चली जाती है। फिर राजा सिखीध्वज एक समय उब जाते हैं और उनके मन में एक विरक्ति होने लगती है। आसक्ति का ये दूसरा रूप है, विरक्ति और आसक्ति एक ही सत्य के दो पहलू हैं। बहुत माँ कहती हैं, द एसेटिक हु इज प्री ऑक्यूपाइड विद व्हाट टू लीव एंड व्हाट नॉट टू ईट इज एज मच अटैच्ड एज द मैन हु इज ऑल द टाइम प्लानिंग कि मैं आज क्या खाऊं और क्या एंजॉय करूं। तो विरक्त हो जाते हैं और कहते हैं मैं सब राजपाट छोड़कर जंगल जाना चाहता हूं। तब भी चुड़ाला कहती हैं ये दूसरी मूर्खता करने दो, ये भी इनके विकास का समय आएगा जब ये सीख जाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो वो जंगल चले जाते हैं, जंगल जाके बहुत समय वो तप करते हैं, कुछ मिलता नहीं उनको, थोड़े बहुत एक्सपीरियंस होते हैं पर मुख्य चीज़ नहीं मिलती। तो बड़े हताश होके सोच रहे हैं क्या करूं क्या नहीं करूं। अब चुड़ाला जो अंदर से कॉन्टैक्ट में थी जान जाती हैं कि अब समय आ गया इनके अवेकनिंग का, अब तक तो ये मार्ग भटक रहे हैं। तो वो एक सन्यासी का रूप धर के जाती हैं, कई वर्ष बीत गए हैं, और कहती हैं तुम क्या ढूंढ रहे हो। कहते नहीं मैं आत्म तत्व को ढूंढ रहा हूँ। पा लिया? नहीं पाया नहीं। क्या क्या किया तुमने? मैंने सब छोड़ दिया। तो चुड़ाला कहती, क्या छोड़ा तुमने, थोड़ा बताओ, एग्जाम्पल देखे। मैंने राजपाट छोड़ दिया। राजपाट वो तुम्हारा था? तो उनको ये रियलाइज होता तो मेरा था ही नहीं, मैं तो मूर्खतावश उसको अपना मान के बैठा था, उसको छोड़ना तो छोड़ना ही नहीं हुआ। तो कहा और क्या छोड़ा, पत्नी को छोड़ दिया। अच्छा वो तुम्हारी थी? तो फिर ये रियलाइज करते हैं, अब कहते हैं मैं क्या बोलूं, तो कहते हैं अच्छा तो फिर मुझे क्या छोड़ना चाहिए, कहते हैं तुम बताओ और क्या छोड़ सकते हो। तो कहते देखो मैं एक स्थान पर नहीं रहता हूं, मैं घूमता रहता हूं, आज इस गुफा में हूं कल कहीं और चला जाऊंगा। वो लिटरली वो जो गीता में अनामय है उसका एक ये दूसरा अर्थ है जो गलत अर्थ है, अनामय का अर्थ है कि मेरा कोई घर नहीं, इट इज़ ए स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो वो कहते हैं अच्छा तो ये सारे स्थान जब तुम वहाँ रहते हो तुम उसको अपना समझते हो? तो कहते ये भी नहीं, कहते हैं मैं क्या छोड़ूं। तो कहते मैं ऐसा करता हूँ ये कमंडलू और ये वस्त्र त्याग कर देता हूँ। तो कहते अच्छा ये तो तुमने अपना तो है ही नहीं, ये तो तुमने लपेटा हुआ अपने शरीर पर वेदर वगैरह से उसके लिए, तो ये तो तुमने शरीर की रक्षा के लिए लपेटा हुआ है। ओ शरीर, हाँ मैं शरीर को त्याग देता हूँ। वो रख के जंप करने वाले हैं क्लिप से। तो तब चुड़ाला कहती हैं मूर्ख अब तक नहीं समझ पा रहे हो, ये तुम्हारी जो समझ की है सब मेरा ये प्रॉब्लम है। तो वो कहते छोड़ना क्या है, उनको अंदर से वो ज्ञान होता है, चुड़ाला कुछ कहती नहीं है कि इस अहम भाव को तो छोड़ना है कि ये मेरा है, और अगर मैं इसको छोड़ दूं तो आत्मज्ञान हो जाएगा। आत्मज्ञान और कुछ नहीं है, आत्मा हर समय, ये प्राप्ति कोई ऐसी प्राप्ति नहीं है कि बाहर कोई चीज है जिसको प्राप्त करना है, ये अंदर का सत्य है, निर्विवाद सत्य है। देयर इज नथिंग एल्स बट द डिवाइन। माँ एक जगह कहती है और कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग इज डिवाइन। एक जगह वो बड़ा पावरफुल है एजेंडा में, 60s की उनकी राइटिंग्स, everything is divine, there is nothing but the divine, you can read an ordinary novel and find divine in it, and you may read a holy book and be far from the divine. Sri Aurobindo ki ek aphorism hai, I went to a place full of holy men and got bored there, then God sent me to a prison and I found there his ashram. Main sadhuon ki sangati mein gaya aur bore ho gaya, तो भगवान ने मुझे जेल में भेजा और वहां मुझे भगवान भी मिल गया और आश्रम भी मिल गया। तो ये एक अवस्था है जिसमें हमें ईगो को छोड़ना सबसे कठिन, यही एक ऑब्स्टेकल है। इतने रूप धर के आता है, इतने छंद भेष हैं इसके, अनेकों अनेक, और ये तब तक नहीं जाती जब तक हम भगवान को पूरी तरह आत्मनिर्भर, यही एक सेल्फ गिविंग इज द ओनली वे, लव एंड सेल्फ गिविंग। क्योंकि तपस्या का अहंकार हो जाता है, तपस्वी हों सूक्ष्म अहंकार हो जाता है, विटनेस पुरुषा मेंटल विटनेस, प्राप्ति का अहंकार हो जाता है, सिद्धि का अहंकार हो जाता है, कहा नहीं ये छुप करके बैठा होता है। कबीरदास जी का भजन है ना, माया बड़ी ठगानी, किसके घर में, शिव के बगल भवानी, वो विष्णु के घर लक्ष्मी बनकर बैठ जाती है। लक्ष्मी क्या है, उनकी शक्ति, शिव के बगल भवानी, अगेन इट इज द पावर ऑफ शिवा। कहते हैं ये माया कहां नहीं ढूंढ लेती है, और इसलिए श्री अरविंद कहते हैं यू कैनॉट स्ले माया बिकॉज इट इज ए पावर ऑफ द डिवाइन, यू कैन स्ले मोहा, माया को आप स्ले नहीं कर सकते। माया भगवान की शक्ति है, वो प्रकट हुई है किसी प्रयोजन से। यू कैन स्ले मोहा, मोह से इल्यूजन आता है, सबसे बड़ा इल्यूजन दिस इज माइन, किसी भी चीज में और हर जगह, इंस्टीट्यूशंस में, स्थान पे, व्यक्तियों के साथ, जहाँ ये भाव आता है वहाँ समस्या शुरू होती है। तो जो सबसे बड़ी कठिनाई है, और ये माता जी के शब्द हैं कि द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल इज द ईगो, द ग्रेटेस्ट एडवर्सरी इज द ईगो, डिजायर से भी ज़्यादा, ईगो से ही डिजायर जन्म लेता है, उसकी वो जननी है, ये मदर है, डिजायर तो उसकी बच्ची है। और ईगो पर अगर हम वर्क करें, इवन वर्किंग ऑन द ईगो बिकम्स एन ईगो, इट कैन टेक दैट एक्सटेंट। आई एम वर्किंग ऑन माय ईगो, अब मेरी ईगो कम हो रही है, अब बढ़ रही है, मॉनिटर करना। माँ कहती स्टॉप मॉनिटरिंग हाउ मच यू आर प्रोग्रेसिंग, मैंने इतनी प्रगति कर ली है, आह इतना पीछे छोड़ दिया है पथ को, इतना आगे आ गया हूं। हर तरह से जब मैं का सवाल आए या विचार आए तब माँ 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 इस रोग से छुटकारा दिलाओ। मैं का ध्यान आना ही मिजरी का कारण है, दुख का कारण है, सब कुछ रोक देता है, स्थगित कर देता है, ब्रेक की तरह काम करता है। साधना में भी मैंने प्रगति की, मैंने प्रगति नहीं की, जो करनी आगे रुक गई, मैंने नहीं की। भाव होना चाहिए माँ मैं स्वयं को तुम्हें प्रस्तुत करता हूं, प्रगति करूंगा या नहीं करूंगा ये तेरी समस्या है, मैं चेष्टाएं करता रहूं ऐसा मुझे बल दे। दैट इज द राइट अप्रोच। वी कैन स्टॉप हियर। एक पोयम पढ़ लेते हैं, पढ़ने का मन कर रहा है तो हमको रेजिस्ट नहीं करना चाहिए। द डिवाइन वर्कर बड़ी अद्भुत पोयम है, सब पोयम सोनेट। दिव्य कर्मी, भगवान का काम, भगवान का काम करना है, क्या अवस्था होनी चाहिए भगवान का काम करने के लिए। पूरी गीता को श्री अरविंद ने ही सोनेट में डाल दिया है अद्भुत ढंग से। आई फेस अर्थ्स हैपनिंग्स विद एन इक्वल सोल, इन ऑल आर हर्ड दाई स्टेप्स, दाई अनसीन फीट ट्रेड डेस्टिनीज पाथवे इन माई फ्रंट, लाइफ्स होल ट्रेमेंडस थ्योरम इज दाउ कंप्लीट। आई फेस अर्थ्स हैपनिंग्स विद एन इक्वल सोल, शुभ अशुभ अच्छा बुरा सब परिस्थितियों को मैं समभाव से डील करता हूँ, फेस करता हूँ। सब चीजों में तुम्हारे ही कदमों की आहट महसूस होती है। इन ऑल आर हर्ड दाई स्टेप्स, जीवन में अशुभ हो गया, अरे ये भी तुम्हारे चरणों की आहट थी। शुभ हुआ, ये भी तुम्हारे चरण गिरे, कभी काली बनकर गिरे, कभी गौरी बनकर गिरे। गौरी और काली एक ही सत्य के दो रूप हैं। दाई अनसीन फीट ट्रेड डेस्टिनीज पाथवे इन माई फ्रंट, मैं सोच रहा हूं मैं अपना मार्ग प्रशस्त कर रहा हूं, नहीं, तुम्हारे चरण मेरा मार्ग खोलते जा रहे हैं। लाइफ्स होल ट्रेमेंडस थ्योरम इज दाउ कंप्लीट, जीवन का संपूर्ण सत्य एकमेव अद्वितीय तुम एकमात्र हो। नो डेंजर कैन पर्टर्ब माई स्पिरिट्स काम, माई एक्ट्स आर दाइन, आई डू दाई वर्क्स एंड पास। खतरा ये क्या चीज है, किस बला का नाम है, इससे मैं क्यों आशंकित हूं, भयभीत हूं, पीड़ित हूं। मेरे अंदर वो शांति विराज गई है जो इस भाव से होती है कि तुम सदैव मेरे साथ हो और सारे कर्म तुम्हारे हैं। माई एक्ट्स आर दाइन, मेरे नहीं है, तुम्हारे हैं। आई डू दाई वर्क्स एंड पास, तो सक्सेस मिलेगी या फेल्योर मिलेगी उसका बड़ा सुंदर। फेल्योर इज क्रेडिल्ड ऑन दाई डेथलेस आर्म, सक्सेस इज दाई पैसेज मिरर्ड थ्रू फॉर्चून्स ग्लास। फेल्योर क्या है, तुम्हारे ही हाथ पर, और सक्सेस क्या है, फॉर्चून के ग्लास से तुम्हारे पैसेज को लोग कहते हैं सक्सेस। इन दिस रूड कॉम्बैट विद द फेट ऑफ मैन, दाई स्माइल विद इन माई हार्ट मेक्स ऑल माई स्ट्रेंथ, सब शक्तियां इसके विरोध में है, भगवत प्राप्ति के विरोध में है, तो फिर हमें शक्ति कहां से आएगी। दाई स्माइल विद इन माई हार्ट, तुम्हारी मुस्कान है जो मुझे शक्ति देती है, तुम्हारा प्रेम है जो मुझे संबल देता है, तुम्हारी कृपा है जो सहारा देती है, और कहीं से ये शक्ति नहीं आती। दाई स्माइल विद इन माई हार्ट मेक्स ऑल माई स्ट्रेंथ, दाई फोर्स इन मी लेबर्स एट दाई ग्रैंडियोस प्लान इन डिफरेंट टू द टाइम स्नेक्स क्रॉलिंग लेंथ। तुम्हारी शक्ति जब मेरे अंदर कार्य कर रही है, मेरे द्वारा कार्य कर रही है, तो मुझे इसकी क्या चिंता है कि ये कार्य आज संपन्न होगा या अनंत काल में संपन्न होगा। इन डिफरेंट टू द टाइम स्नेक्स क्रॉलिंग लेंथ, अनंत नाग धीरे धीरे करके अपनी कॉइल्स खोलता है, परंतु तुम्हारा ये कर्म है, आज संपन्न होगा या वर्षों बाद होगा, कई जन्मों बाद होगा, ये तुम्हारी समस्या है। नो पावर कैन स्ले माई सोल, इट लिव्स इन दी, दाई प्रेजेंस इज माई इमोर्टैलिटी। सिक्योरिटी क्या है इस संसार में, सेफ्टी क्या है इस संसार में, वॉट इज द सिक्योरिटी इन दिस वर्ल्ड, दाई प्रेजेंस। मैंने स्वयं को तुम्हें अर्पित किया है, तो कौन मेरा मुझे हानि पहुंचा सकता है। अनेकों मुखौटे धर करके अनेकों अनेकों शक्तियां आएंगी, विरोधी शक्तियां आएंगी, दैवी शक्तियां आएंगी, मार्ग को रोकने आएंगी, परंतु कोई मेरी सोल को स्ले नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि तुम इसके साथ हो। नो पावर कैन स्ले माई सोल, इट लिव्स इन दी, थाई प्रेजेंस इज माई इमोर्टैलिटी। कितनी अद्भुत है, और पूरी गीता का सार इस भाव से जीवन को जीना। हम लोग यहाँ रुकेंगे और शाम को लास्ट सेशन इसका।